लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम पर हम आपसे कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वह स्वतः को सुसमाचार के प्रकाश में नवीकृत करने की कृपा और शक्ति प्राप्त कर सके। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं रविवार ये आराधना विधि चिंतन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओ, हमारा हृदय वह खजाना है जहाँ से हम अच्छी चीजें दूसरों के लिए निकाल कर देते हैं। यह वह भंडार है जहाँ हम जितनी अच्छी चीजों को संग्रहित करते वह हमें उतना ही बेहतर इंसान बनने में मदद करता है। यही कारण है कि पुराने व्यवस्थान सुक्ति ग्रंथ के अध्याय 4:23 में राजा सुलेमान की प्रज्ञा हमें कहती है, तुम बहुत सावधानी से अपने हृदय की रक्षा करो, क्योंकि जीवन का स्रोत उससे फूटा करता है। यीशु बीजों के दृष्टांत में इस तथ्य को और आगे ले चलते हुए मानव हृदय को एक खेत की संज्ञा देते हैं, जहां ईश वचन रूपी बीज बोए जाते हैं। अतः हमारे हृदय रूपी खेतों की मिट्टी जितनी उर्वरक होती, हम अपने हृदय के खार पतवार को जितना अधिक निकालकर अच्छी भूमि तैयार करेंगे, प्रेम रूपी हमारी फसल दूसरों के लिए उतनी ही अच्छी, मीठी, मधुर और दुगुनी होगी। श्रोताओ, वर्ष के 22वें सामान्य रविवार आराधना विधि चिंतन हेतु लिए गए पाठों का केंद्र बिंदु मानव का हृदय है, जहां हम ईश्वर से मिलने वाली शिक्षा को सुनने और उसे अपने हृदय में संजोकर रखने हेतु आमंत्रित किए जाते हैं, क्योंकि ईश्वर के वचनों को सुनना, उन पर चिंतन करते हुए उनके अनुरूप चलना हमें बुद्धि और विवेक से भर देता है। ईश्वरीय आज्ञाओं का अनुपालन हमारे लिए जीवन का कारण बनती है। आइए हम सुसमाचार में प्रभु वचनों को सुनते हुए इस बात पर चिंतन करें, हम किस रूप में ईश्वरीय वचनों को अपने हृदय में ग्रहण करते हैं। हमारे हृदय रूपी भूमि से किस तरह के फलों की पैदावार होती है। क्या हमारे द्वारा उत्पन्न किए गए फल दूसरों को अच्छे और मीठे लगते हैं।
फरीसी और यरूशलेम से आए हुए कई शास्त्री ईसा के पास इकट्ठे हो गए। वे यह देख रहे थे कि उनके शिष्य अशुद्ध यानी बिना धोए हाथों से रोटी खा रहे हैं। पुरखों की परंपरा के अनुसार फरीसी और सभी यहूदी बिना हाथ धोए भोजन नहीं करते। इसलिए फरीसियों और शास्त्रियों ने ईसा से पूछा, आपके शिष्य पुरखों की परंपरा के अनुसार क्यों नहीं चलते? वे क्यों अशुद्ध हाथों से रोटी खाते हैं? ईसा ने उत्तर दिया, ईसाइस ने तुम ढोंगियों के विषय में ठीक ही भविष्यवाणी की है, जैसा कि लिखा है, ये लोग मुख से मेरा आदर करते हैं, परंतु इनका हृदय मुझसे दूर है। वे व्यर्थ ही मेरी पूजा करते हैं, और ये जो शिक्षा देते हैं वे हैं मनुष्य के बनाए हुए नियम मात्र। तुम लोग मनुष्यों की चलाई हुई परंपरा बनाए रखने के लिए ईश्वर की आज्ञा टालते हो। तुम लोग सब के सब मेरी बात सुनो और समझो। ऐसा कुछ भी नहीं है जो बाहर से मनुष्य में प्रवेश कर उसे अशुद्ध कर सके, बल्कि जो कुछ मनुष्य से निकलता है वही उसे अशुद्ध करता है, क्योंकि बुरे विचार भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से निकलते हैं। व्यभिचार, चोरी, हत्या, परगमन, लोभ, द्वेष, छल कपट, लंपटता, ईर्ष्या, झूठी निंदा, अहंकार और मूर्खता, ये सब बुराइयां भीतर से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं।
श्रोताओ, ईश्वर के जीवंत वचन हमें अपने जीवन की वास्तविक स्थिति से रूबरू कराए, जिससे हम अपने जीवन की सच्चाई को, अपने आप को जान सकें, अपने व्यवहार को पहचान सकें, या हमें आंतरिक रूप में परिशुद्ध करे, जिससे हम अपने हृदय के भंडारण से उत्तम चीजों को निकाल सकें, जो हमें ईश्वरीय प्रतिज्ञाओं के भागीदार बनाता है, जिसके फलस्वरूप हम प्रतिज्ञात देश में प्रवेश करने के अधिकारी बनते हैं। श्रोताओ, विधि विवरण ग्रंथ से लिया गया आज का पहला पाठ मूसा द्वारा चुनी प्रजा को दिए गए निर्देश की चर्चा करता है, जहां नबी मूसा आज्ञाओं में छिपी रहस्य को प्रकट करते हैं। वे इसराइलियों को याहवे द्वारा दी गई आज्ञाओं का अक्षरशः पालन करने का निर्देश देते हैं, क्योंकि आज्ञाओं के पालन में हम अपने को जीवन के सच्चे और अच्छे मार्ग पर बढ़ता हुआ पाते हैं। आज्ञाओं का अनुपालन हमें जीवन की राह में भटकने से बचाता और ढाल की भांति दुनिया की बुराइयों से हमें सुरक्षित रखता है। श्रोताओ, इस संदर्भ में माता पिताओं द्वारा अपने संतान को दी गई आज्ञा पालन की शिक्षा संतानों की भलाई हेतु होती है। परिवार में अभिभावकों द्वारा आज्ञा अनुपालन के निर्देश बच्चों के प्रति उनके प्रेम को प्रकट करता है, क्योंकि दुनिया में कोई भी माता पिता ऐसे नहीं जो अपने बच्चों को गलत राह में जाते हुए देखना चाहते हों। कोई भी अभिभावक यह नहीं चाहता कि उसका बच्चा या बच्ची बुराई का शिकार हो। यही बात हमारे ईश्वर के साथ भी है, जो हमें प्रेम करते और अपने प्रेम के कारण सदैव हमारी भलाई सोचते तथा हमें जीवन के अच्छे मार्ग में बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। श्रोताओ, पिता ने बेटे यीशु को दुनिया में भेजते हुए हमारे लिए अपने अतुल्य प्रेम को प्रकट किया है। यीशु का हमारी तरह मानव बनना यह घोषित करता है कि सभी उत्तम दान और पूर्ण वरदान हमारे लिए ऊपर से ईश्वर की ओर से आते हैं। अपने पुत्र को दुनिया में भेजते हुए पिता ईश्वर हमें वचन के श्रोता मात्र नहीं अपितु वचन के कर्ता बनने का निमंत्रण देते हैं। बेटे ने पिता के वचनों को सुन हमें सत्य की शिक्षा दी और पिता की शिक्षा को अपने कार्यों में पूरा किया। ईश्वर के वचनों को सुनकर जब हम उन्हें अपने प्रेमपूर्ण कार्यों में पूरा करते तो हम पिता की इच्छा पूरी करते हैं, जिसके लिए उन्होंने हमें जीवन दिया है, और इस भांति हम यीशु ख्रीस्त में सृष्टि के प्रथम फल बनते हैं। आज का दूसरा पाठ हमें वचन के पालनकर्ता होने के पूर्व वचन के शीघ्र श्रोता होने को कहता है। वहीं हमें बोलने और क्रोध करने में देर करने का आह्वान किया जाता है, क्योंकि क्रोध धार्मिकता में सहायक नहीं होता है। हमारे हृदयों में रोपे गए ईश वचनों को नम्रता में स्वीकारना हमारी मलिनता और बुराई को दूर करती हमारी आत्मा का उद्धार करती है, क्योंकि ईश्वर के दिव्य वचन सजीव और शक्तिशाली हैं। ईश्वर के वचन जो हमारे लिए आज्ञाओं के रूप में आते हैं जीवन का स्रोत तब बनते हैं जब हम उन्हें सुनते हृदय में ग्रहण करते और उन पर चिंतन करते हुए उनके अनुरूप अपने कार्यों को पूरा करते हैं। ईश वचनों को सुनना, उन्हें हृदय में धारण करना और उन पर चिंतन करना हमारे हृदय रूपी भूमि को ईश्वरीय प्रेम में हरियाली से भर देता है, क्योंकि यह प्रक्रिया हमारे हृदय की नम्रता को व्यक्त करती है, जहां ईश्वर क्रियाशील रहते हैं। वचनों को ग्रहण करना स्वयं ईश्वर को अपने हृदय में स्थान देना है, जो हमें संचालित करते और हम में परिवर्तन लाते हैं, और इसीलिए तो हम गाते हैं, दिल में संजो कर रख लो, गले में पहन लो माला बनाकर, क्योंकि रात्रि के समय में वो हमारा उजाला है, वहीं संकट के समय में प्रभु का वचन हमारा सहारा है। श्रोताओ, जब हम ऐसा करते तो निश्चित रूप में हम अपने हृदय रूपी भंडार को अच्छी चीजों से भरते हैं, जो अच्छे आचरण, अच्छे व्यवहार, ईमानदारी और निष्ठा रूपी गुणों स्वरूप दूसरों के लिए हम में प्रकट होती है। हम सत्य को अपने में धारण करते और सत्य के वाहक होते हैं, क्योंकि ईश्वर सत्य है। आइए हम पवित्र आत्मा से निवेदन करें कि वे हमें ईश वचनों को अपने में धारण करने हेतु प्रेरित करें, जिससे हमारा जीवन मानव समाज हेतु एक अच्छा फलदायक वृक्ष बन सके।
वचन तुम्हारे सदाए सत्यम बनाय संसार सुंदरम। विश्व सारा तुम्हारी काया,
विश्व सारा तुम्हारी काया,
ये विश्व सारा तुम्हारी काया,
विश्व सारा तुम्हारी काया,
तुम्हारे शब्दों से ज्ञान पाया,
तुम्हारे शब्दों से ज्ञान पाया।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने शनिवार 28 अगस्त को फ्रांस के लाजारे संघ के 200 सदस्यों से वैटिकन के पॉल षष्ठम सभागार में मुलाकात की तथा कहा कि वे हमें सच्चे जीवन का मूल्य सिखाते हैं। लाजारे संघ अपनी स्थापना की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। संत पापा ने उन्हें संबोधित कर कहा, मैं इस सुंदर अनुभव के लिए ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि आप एक साथ प्रतिदिन को भ्रातृत्व में जीते हैं। यहाँ आप न केवल खुद के लिए बल्कि विश्व के लिए भी एक सामाजिक मित्रता का प्रदर्शन करते हैं, जिसको जीने के लिए हम सभी बुलाए गए हैं। उन्होंने कहा, एक ऐसे वातावरण में जो उदासीनता, व्यक्तिवाद एवं स्वार्थ से बिखरा हुआ है, आप हमें सच्चे जीवन का मूल्य सिखाते हैं। यह विविधताओं को स्वीकार करने, मानव प्रतिष्ठा का सम्मान करने, दूसरों को सुनने और उन पर ध्यान देने तथा तीन लोगों की सेवा करने में है। वास्तव में दूसरों के प्रति प्रेम हमें उनके जीवन की उत्तम चीजों को खोजने की प्रेरणा देता है। सिर्फ इसी के द्वारा सामाजिक मित्रता संभव है, जो किसी को दरकिनार नहीं करता और सभी के भाईचारा के लिए खुला है। संत पापा ने लाजारे संघ के सदस्यों को प्रोत्साहन देते हुए कहा कि समाज में उन्हें एकाकी, तिरस्कार एवं बहिष्कार का सामना करना पड़ सकता है, किंतु वे कभी न छोड़ दें, कभी निरुत्साहित न हों और अपने हृदय में आनंद की आशा को बनाए रखें। उन्होंने कहा, आपके जीवन का साक्ष्य हमें स्मरण दिलाता है कि गरीब सच्चे सुसमाचार प्रचारक हैं, क्योंकि वे ही हैं जिन्हें सबसे पहले सुसमाचार सुनाया गया था तथा वे ही प्रभु और उनके राज्य की धन्यताओं को साझा करने के लिए बुलाए गए थे। संत पापा ने सदस्यों को आमंत्रित करते हुए कहा, मैं आप सभी को निमंत्रण देता हूँ कि आप अपनी प्रतिबद्धता एवं विश्वास में दृढ़ बने रहें। आप ख्रिस्त के प्रेम के चेहरे हैं, अतः अपने आसपास इस प्रेम की अग्नि को फैलाएं, जो ठंडे और सूखे हृदय को उष्मा प्रदान करता है। सिर्फ मित्रता के जीवन और अपने संघ में सदस्यों के साथ विचारों का आदान प्रदान करने से संतुष्ट ना हो जाएं, बल्कि उससे आगे बढ़ें। मुफ्त में देने और पाने वाले प्रेम की भावना को अपनाएं। उपनगरों में जाएं जहां एकाकीपन, उदासी, आंतरिक घाव हैं एवं जीवन जीने की रुचि नहीं रह गई है। पीड़ित हृदय में आपकी बातों और व्यवहार से सांत्वना एवं चंगाई के तेल लगाएं। उन्होंने स्मरण दिलाते हुए कहा, आप यह भी ना भूलें कि आप एक वरदान हैं, ईश्वर के आज हैं, उनके प्रेम हृदय में एक विशेष स्थान रखते हैं। लोग भले ही आपको तिरस्कार की नज़र से देखें, आप ईश्वर की नज़रों में महत्वपूर्ण हैं। ईश्वर आपको प्यार करते हैं और उनके लिए मूल्यवान हैं। अतः आनंद के साथ जीने और दूसरों को जीने देने की आशा को कभी न खोएं।
तब संत पापा ने उन्हें तथा उनके परिवार वालों को माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा प्रभु को समर्पित किया और उन्हें अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया। संत पापा फ्रांसिस ने संत अगस्तीन के पर्व दिवस पर वैटिकन अध्याय के लिए परिवर्तनकालीन मानदंडों को अनुमोदन दिया। इसका उद्देश्य है महागिरजाघर में पुरोहितों की धार्मिक एवं प्रेरितिक सेवा पर जोर देना। संत पापा फ्रांसिस ने आज संत अगस्तीन के पर्व दिवस पर वैटिकन में संत पेत्रस के अध्याय के परिवर्तनकालीन मानदंडों को मंजूरी दी। इसे 1 अक्टूबर से लागू किया जाएगा। इसका उद्देश्य है उस प्राचीन प्रथा में सुधार लाने का प्रोत्साहन देना जो व्यवस्था के संशोधन के लिए समीक्षाधीन है। खासकर वे रविवार एवं छुट्टियों के दिनों में वैटिकन महागिरजाघर में पुरोहितों द्वारा अब तक किए जा रहे धर्म विधिक एवं प्रेरितिक संजीवता की सेवा को पुनः जारी रखना चाहते हैं। नए नियम के अनुसार 30 साल से कम उम्र के पुरोहितों को 1 निर्धारित राशि प्राप्त होगी, जिससे परम धर्माध्यक्ष रोमी कार्यालय और परमधम पीठ से जुड़ी अन्य संस्थाओं में प्रदान की गई सेवाओं के लिए अन्य कमीशन या वेतन के साथ नहीं जोड़ा जाएगा। वैटिकन अध्याय के धर्मवैदिक समारोहों में सहायता करने वाले संचालकों के लिए भी प्रेरितिक कार्य एवं अन्य कार्यों में यही नियम लागू होगा। आर्थिक गतिविधियों के प्रशासन एवं व्यवस्था जो संग्रहालय कोष एवं धार्मिक वस्तुओं की बिक्री से संबंधित है, उससे फैब्रिकादि संत पेत्रो को सौंप दिया जाएगा, जो वैटिकन अध्याय के कर्मचारियों को वेतन प्रदान करेगा। अध्याय वर्तमान में मौजूद अचल संपत्ति और वित्तीय संपत्ति एवं संबंधित आय को बनाए रखना और प्रशासित करना जारी रखेगा। यह भी निर्धारित किया गया है कि सेवा में वैटिकन के धर्मवैदिक समारोहों में सेवा देने वाले पुरोहितों और व्यवस्थापकों को निर्धारित राशि फैब्रिका द्वारा ही प्रदान किया जाएगा। वैटिकन में संत पेत्रस महागिरजाघर का अध्याय पुरोहितों का एक ऐसा समूह है जो पोप द्वारा मिस समारोहों के अनुष्ठान एवं व्यवस्था के लिए नियुक्त होते हैं। आज कैथोलिक कलीसिया संत अगस्तीन का पर्व मनाती है। संत पापा फ्रांसिस ने संत अगस्तीन की याद करते हुए 28 अगस्त के ट्वीट संदेश में लिखा, संत अगस्तीन ने कहा, मुझे डर है कि यीशु कहीं बेखबर पार ना हो जाए। यह महत्वपूर्ण है कि सचेत रहा जाए, क्योंकि जीवन की एक बड़ी भूल होगी यदि हजारों चीजों में व्यस्त रहकर ईश्वर को ध्यान ना दिया जाए। अमेरिकी जब 1963 में डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर के जुलूस की याद कर रहे हैं, उनकी बेटी डॉक्टर बेर्निचे किंग ने उस ऐतिहासिक दिन के विरासत पर चिंतन किया है, साथ ही साथ इस बात पर प्रकाश डाला है कि मानव अधिकार आंदोलन के सदस्य पोप फ्रांसिस से किस तरह प्रेरणा ले सकते हैं। डॉक्टर बेर्निचे किंग कुछ ही महीनों की थीं जब उनके पिता डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने वॉशिंगटन में 28 अगस्त 1963 को एक जुलूस का नेतृत्व किया था तथा अपने प्रसिद्ध भाषण मेरा एक सपना है को दिया था। उस दिन के बाद से लगभग 6 दशकों तक उन्होंने डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर के पद को जोश और समर्पण के साथ लिया है, जिसके लिए उन्होंने अपना जीवन दिया। वे अपने पिता के अहिंसा के सिद्धांत को पूरे अमेरिका में फैलाना चाहते हैं। वैटिकन न्यूज के साथ एक साक्षात्कार में डॉक्टर किंग ने अपने पिता की विरासत की याद की एवं संत पापा की प्रेरणा पर चिंतन किया जो मानव अधिकार की रक्षा हेतु प्रोत्साहन देते हैं। डॉक्टर किंग ने गौर किया कि उनके पिता एवं उनके पूर्वजों ने सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए अहिंसक रणनीतियों और कार्यनीति की विरासत को छोड़ दिया है। डॉक्टर किंग ने कहा कि उनके पिता सामाजिक एवं राजनीतिक मामलों एवं संघर्षों का सामना करने के रास्ते पर चले। उन्होंने कहा कि अहिंसा का अधिक अध्ययन एवं प्रचार किया जाना चाहिए, क्योंकि यह सामाजिक परिवर्तन लाने का एक बहुत प्रभावी साधन है। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।